الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سلسلة ہے بندوں کے حقوق اور اس میں آج شوہر کے حقوق کا بیان ہوگا. حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو چار چیزیں ملیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی. ایک شکر گزار دل، دوسری شے یاد خدا کرنے والی زبان، تیسری بات مصیبت پہ صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی بات ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی ہو، وفادار اور اپنی ناموس کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی. بیوی پر جو شوہر کے حقوق ہیں یہ بے حد و حساب ہیں. شوہر پر جو بیوی کے حقوق ہیں ان کی بڑی تفصیل ہم نے اپنے پچھلے تین پروگراموں میں بیان کی تھی، اور جو شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات، احادیث طیبہ، بزرگان دین کے واقعات سے کتاب مالا مال ہے. چند ایک حقوق جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا حق شوہر کا بیوی پر، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ازدواجی معاملات میں اپنے شوہر کی مطلقاً اتباع کرے، اطاعت کرے. یعنی جو میاں بیوی کے باہمی تعلقات ہیں اس میں شوہر کا حکم جو ہے وہ حرف آخر ہوگا اور اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا. اور جو ازدواجی معاملات کے علاوہ زندگی کے دیگر معاملات ہیں اس میں بھی شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اگرچہ ان کا حکم وہ والا نہیں ہے جو پہلے بیان کیا گیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا، مرد عورتوں پر حکمران ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس وجہ سے کہ مرد اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں. چونکہ جو اخراجات کی ذمہ داری ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، جو اخراجات کی ذمہ داری ہے وہ شوہر پوری کرتا ہے، تو اختیار و اقتدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. شوہر کی اطاعت کرنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، اس حوالے سے احادیث طیبہ میں جتنی تاکید ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. وہ جو تین افراد ہیں اس میں سے ایک وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، حتیٰ کہ شوہر راضی ہو جائے. یعنی جب تک شوہر ناراض ہے تو بیوی کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کی ناراضگی کسی جائز وجہ سے ہے. ایک شوہر رہتا ہی ناراض ہے، اس نے کسی صورت راضی ہونا ہی نہیں ہے، وہ اس کا معاملہ جدا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں. تو اگر بیوی کی غلطی ہے، بیوی اطاعت نہیں کرتی اور شوہر اس وجہ سے اس سے ناراض ہوتا ہے، تو ایسی بیوی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی طرف بلائے اور وہ انکار کرے اور مرد اس سے ناراض ہو کر رات گزارے، تو فرمایا کہ صبح تک فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے. تو یہ بڑی سخت وعید ہے اور یہ بتاتی ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا جو ان کے باہمی ازدواجی معاملات ہیں اس میں کتنی ضروری ہے. شوہر کا دوسرا حق اس کی خدمت کرنا، بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے، اس کی دلجوئی کرے اور اس کی خوشنودی کے حصول کی پوری کوشش کرے۔ اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اور اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کی رضا جوئی کے لیے کیا کیا کرے۔ دیکھیں، ایک تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے اپنے آپ کو ویسا رکھے جیسے شوہر اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر شوہر سادگی پسند ہے اور اسے یہی پسند ہے کہ بیوی اس کے سامنے سادگی کے ساتھ رہے تو بیوی ویسے رہے، اور اگر اسے یہ پسند ہے کہ بیوی جو ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ رہے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر یہ خواہش لیے دنیا سے رخصت ہو جائے کہ کبھی وہ اپنی بیوی کو اس روپ میں بھی دیکھ لے جس روپ کے اندر یہ تقریبات میں جاتی ہے، جس روپ کے اندر یہ شادی بیاہ میں جاتی ہے، جس روپ کے اندر یہ رشتہ داروں کے پاس جاتی ہے، تو کبھی گھر کے اندر مجھے بھی یہ توفیق مل جائے کہ میں اپنی بیوی کو اس انداز میں دیکھ لوں۔ تو شوہر کے لیے زیب و زینت کا اختیار کرنا یہ بیوی کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح عورت کا جو طرز عمل ہے، جو بیوی کی زندگی کا طرز عمل ہے، وہ یہ بتائے کہ اسے شوہر کی رضا مطلوب ہے۔ ایک لاپرواہی اور ایک جسے انڈیفرنس کہا جاتا ہے، لا تعلقی، یہ رویہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے جی شوہر توجہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ بیوی کا معاملہ شوہر کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ شوہر اگر لاپرواہ ہے تو بیوی بولے کہ اگر تم ایسے تو ہم بھی ایسے، ہم بھی آدمی ہیں تمہارے جیسے، ایسا نہیں۔ بلکہ بیوی کے لیے یہی ہے کہ وہ شوہر کی خوشنودی کی تلاش کے اندر بہر صورت کوشش کرتی رہے۔ اچھا، اسی طرح شوہر کی خدمت اور دل جوئی کے لیے کھانے کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ عام طور پہ اور آج کے زمانے میں خاص طور پہ اچھے کھانے کھانا، لذیذ کھانے کھانا، یہ تقریباً ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ اب شوہر کی خواہش تو یہ ہے کہ اس کے لیے نئے کھانے بھی ہوں، اچھے بنے ہوئے بھی ہوں، پریزنٹیشن بھی اس کی اچھی ہو، لیکن بیوی جو ہے وہ قسم کھا کے بیٹھ جائے کہ میں نے سوائے دال کے کچھ کھلانا ہی نہیں، اور میں نے بالکل سوائے جو ہے وہ سادہ ترین کھانے کے کچھ کھلانا ہی نہیں، تو اسی لڑائی جھگڑے کے اندر پوری زندگی گزر گئی اور شوہر کو اچھا کھانا نصیب نہ ہوا۔ پھر وہ بیچارہ کبھی باہر کھائے گا تو کبھی کسی کے ہاں کھائے گا تو کبھی کہیں جا کے کھائے گا۔ تو کسی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے، یعنی شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے جاتا ہے، کہ آپ اگر اس کے پیٹ کی تسکین جو ہے کرنے کے لیے اچھے کھانے بنا کے دیتی ہیں تو اس کا دل جیتنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، اب اسی میں کیا ہوتا ہے کہ جو شاید بیوی کو بنانا نہیں آتی، شوہر کی ڈیمانڈ ہوتی یہ بنائے، تو اب کیا ہے کہ اب عورت اس کے سیکھنے کی کوشش کرے۔ کھانا بنانا یہ کوئی آسمان کو ہاتھ لگانے کے برابر تو ہے نہیں کہ جناب کھانے کی جو ورائٹی ہے اور کھانے کی جو ڈش ہے وہ بنانی آ ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ بھی کوشش کر لے، دنیا جہان کی ہر ڈش بنانا ممکنات میں سے ہے۔ اگر ایک انسان بنا سکتا ہے تو باقی انسان بھی بنا سکتے، تو اگر کوشش کی جائے تو یقین کیجئے کہ کیا پاکستانی اور کیا انڈین کھانے اور کیا جاپنیز اور کیا چائنیز اور کیا کورین اور کیا تھائی اور کیا یورپین اور کیا امریکن، ہر طرح کا کھانا گھر میں تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر بیوی اس حوالے سے یہ سوچ رکھے کہ مجھے شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ کرنا ہے۔ ایک اور اہم چیز کہ شوہر کی خدمت کا ایک موقع اور اس کی دلجوئی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر شوہر بیمار ہے تو اب اس کی تیمارداری اور اس کی خدمت روٹین سے زیادہ کرے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ بہت سی چیزوں میں انسانی نفسیات جو ہے نا، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بیان کرنا بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیمار آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ بس ساری دنیا اس کے ارد گرد ہی گھومتی رہے۔ جیسے بچے کا ہوتا ہے نا، بچے کو کیا ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو تو بچہ کیا کرتا ہے کہ وہ جیسے ہی دیکھے گا نا کوئی پاس سے گزرا تو ساتھ ہی ہائے ہائے شروع کر دے گا۔ کیوں؟ تاکہ اسے پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیسے ہو، بیٹا کیسے ہو، ٹھیک ہو۔ یہ معاملہ ہر شخص کا ہے یا اکثر کا ہے، مرد ہے یا عورت۔ بیوی آدھی بیمار ہوتی ہے نا تو آپ سمجھ رہے کہ دو گنا ظاہر کرتی ہے، شوہر آدھا بیمار ہوتا ہے وہ بھی دو گنا ہی ظاہر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، اسے توجہ چاہیے ہوتی ہے، اسے پیار کے دو بول چاہیے ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر کسی کو اسی سے خوشی ہو جاتی ہے تو پہنچا دے اسے۔ اگر آپ کسی کو تھوڑا سا ذرا زیادہ بڑھا چڑھا کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، ये दो चार बातें इजाफी करनी होती हैं, तबीयत भी ठीक हो जाती है, बंदा भी ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा जिन चीज़ों से दिलजोई कर सकते हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, फिर इसके साथ उसकी रजाजोई और खिदमत की एक और सूरत कि अगर वो नाराज हो तो खुशामद करके मनाना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो उमूमी तौर पे घरों में होता है वो तो ये है कि भाई शौहर नाराज है तो थोड़ा बहुत तो चले किया कि भाई हो जाए राजी, नहीं है तो ना सही। तो ये जो नहीं है तो ना सही वाला रवैया है, ये घरों में नहीं होना चाहिए। उसकी जगह यही है कि शौहर को राजी करने की कोशिश की जाए। और इसमें उलमा ने लिखा है कि अगर खुशामद करके भी शौहर को राजी कर सकते हैं तो उसकी खुशामद करना जायज़ है, बल्कि बहुत बेहतर है। खुशामद का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा ज़रा बढ़ा चढ़ा के तारीफ़ कर देना, थोड़ा सा ज़रा एक दो चार जुमलों का इजाफा कर देना। तो मियाँ बीवी के साथ जो अल्लाह ताला ने जो इनका रिश्ता बनाया है उसमें यहाँ तक भी इजाज़त दी गई है। अच्छा, फिर इसी तरह शौहर की दिलजोई के लिए, उसे खुश करने के लिए, शौहर के जो माँ बाप हैं, जो उसकी बहनें हैं, तो उनके साथ भी अच्छा सलूक करना, क्योंकि ये एक फितरी सी बात है कि शौहर जो है, जो बेटा है, उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि उसके माँ बाप की खिदमत हो रही है, उसे बड़ा अच्छा लगेगा कि उसकी बहनें अगर शादीशुदा हैं वो घर में आती हैं तो उसकी बीवी अच्छे तरीके से उनको वेलकम करती है। अब अगर जो है वो बहनें आई, यानी कि जिसे नंद कहते हैं, अगर नंद आई, अब शादी के बाद वो आई है तो इधर जो है वो भाभी का मूड ही ख़राब हो गया, और अब जब तक वो रुख्सत हो नहीं जाएगी इसका मूड सही होगा नहीं। हर शहर के अंदर कुड़ कुड़ करना और उनके आने के बाद अपने बच्चों को डांटना शुरू कर देना, ये बीसियों तरीके होते हैं। घरों में रहने वाला हर बंदा जानता है कि क्या सूरत हाल होती है। तो शौहर की खुशी के लिए उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदारों से, कि जिनको पर्दे की रियायत करते हुए, जिनके साथ हुसने सलूक जितना किया जा सकता है उतना करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये यूँ कह लें, ये शौहर के वाजिब हुकूक में नहीं आती, यानी कि वाजिब नहीं है शरण के शौहर के माँ बाप की खिदमत की जाए और उसकी जो है वो बहनों को अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए, ये वाजिबात में नहीं आएगा। लेकिन अच्छे घराने का और खुशगवार घराने का और खुशियों से भरे घराने का जो उसलूब और तरीका है वो यही होता है जो मैंने अर्ज कर दिया। इस हवाले से एक हदीस मुबारक भी अर्ज करता हूँ। इब्ने माजा की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं। और वो क्या है? फरमाया कि अगर शौहर बीवी को हुक्म दे तो बीवी उसकी इताअत करे, और अगर शौहर बीवी को देखे तो शौहर खुश हो जाए, और अगर वो अपनी बीवी के मुतालिक कसम खा बैठे तो बीवी उसकी कसम को सच्चा करे, और अगर शौहर कहीं चला जाए तो बीवी अपने नफ्स और शौहर के माल के मामले में भलाई करे। ये एक हदीस है कि जिसमें अच्छे ताल्लुकात और मियाँ बीवी के अच्छे खुशगवार ज़िंदगी के बड़े बुनियादी उसूल बयान कर दिए कि अच्छी बीवी कौन सी है। तो फरमाया कि शौहर हुक्म दे तो बीवी इताअत करे। आगे से नाफरमानी का, अड़ जाने का, ना मानने का, तवज्जो ही ना देने का, बात ही ना सुनने का रवैया ये नहीं, बल्कि शौहर हुक्म दे तो बीवी उसकी इताअत करे। हाँ, इसमें देखें बात यह है कि ये मामलात ऐसे होते हैं कि हर सूरत में आगे 50 सूरतें बनती, यानी जैसे इसमें शौहर को भी ये देखना होता है कि वो बीवी को जो हुक्म दे रहा है उसके लिए उस पर अमल दरामद करना कितना मुमकिन है। ऐसा तो नहीं है कि शौहर बीवी को बोले कि तुम 24 घंटे एक टांग पे खड़ी हो जाओ, ना तुम मुझे सोती नजर आओ, ना तुम मुझे खाती नजर आओ, ना तुम मुझे कोई जो है ना आराम से बैठी नजर आओ, बस हर वक्त जो है ना चहलकदमी हो रही हो। तो अब ये जो मर्ज है कि शौहर ने जो है वो पानी भी गलती से शादी के बाद कभी खुद उठ के नहीं लेना, और उसने कभी तिनका भी नहीं तोड़ना, और कभी मामूली से मामूली काम भी नहीं करना, ये जो शौहर जो है वो आदाते बद जो है वो अपना के बैठे हो, तो बहरहाल ये उनकी गलती होगी कि अब अगर बीवी उनकी बात नहीं मानती और उनकी परवाह नहीं करती। तो लिहाजा यहाँ पर दोनों तरफों को बड़ा ही जो वो गौर से देखना होता है। शौहर ये समझ बैठते हैं कि जनाब बस अब हम ऐसे, हमें जो है वो कुरान ने फरमा दिया कि मर्द औरतों पे हाकिम है, तो हम पता नहीं ऐसे हाकिम हो गए कि दुनिया का बादशाह भी ऐसा हाकिम नहीं होगा जैसा शौहर बीवी पे हाकिम बना हुआ। तो शौहर को बीवी पर फौकियत हासिल है, दर्जा बुलंद है उसका, लेकिन उस बुलंद दर्जे का मतलब जो है 24 घंटे और 60 साल की ऐसी नौकरी नहीं कि जिसके अंदर कभी आराम नाम की चीज़ ही नहीं, ऐसा नहीं है। शौहर जो है वो तो दोस्तों के अंदर भी घूमे फिरे, वो जहाँ चाहे जाए, जो चाहे खाए, जब चाहे आए, जब चाहे जाए। और बीवी बस जो है वो शौहर रात के 3 बजे भी आए तो बीवी दरवाजे के पास ही जना वो बैठी होनी चाहिए कि पता नहीं कब मौसूफ आके दरवाज़ा खटखटाएंगे और मैंने जम मार के दरवाज़ा खोलना है, ऐसा नहीं है। तो उसको भी अपनी बीवी के आराम का ख्याल करना होता है। शौहर सारा दिन जो है वो क्या नाम है रोड़ों पे फिरता रहा और रात में आके बोले कि मेरी टांगें बड़ी दर्द कर रही हैं तो लिहाजा सुबह तक मेरी टांगें दबाते रहो। तो ये जो फजूलियात वाली खिदमत हैं ये खिदमत नहीं, खिदमत से मुराद कि जो माकूल लोगों के घरों में जो खिदमत ली जाती हैं और जिसकी कोशिश की जाती है। तो पहली चीज़ कि शौहर हुक्म दे तो उसकी इताअत करें, और फिर इसमें भी जायज़ हुक्म में ही इताअत करने की इजाज़त है, नाजायज़ में नहीं। यानी शौहर बोले कि तुम अपने माँ बाप से ताल्लुक़ तोड़ दो, तो अब माँ बाप से ताल्लुक़ तोड़ना जायज़ नहीं है, तो इसमें शौहर की इताअत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इताअत करना ही जायज़ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात कही कि शौहर बीवी को देखे तो उसे खुशी हो। इस खुशी होने से मुराद यही है कि बीवी अपने आप को इस अंदाज में रखे कि शौहर को उसको देख के खुशी हो। अच्छा, इसी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें भी शामिल है। मिसाल के तौर पे शौहर को ये पसंद है कि उसकी बीवी कुरान की तिलावत करे, जिक्र इलाही करे, वो तस्बीह भी करती कभी नज़र आए, वो कुछ पढ़ती हुई नज़र भी आए, वो नमाज की पाबंदी करते भी नज़र आए। तो अब बीवी को चाहिए कि इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर कोशिश करे कि नेकी की नेकी और शौहर की इताअत भी, शौहर की खुशी भी। लेकिन इसके साथ दूसरी बात ये भी है कि ये नहीं है कि शौहर को बीवी की ज़रूरत है और बीवी मुसल्ले से नहीं उठ रही। अब ये दूसरा एंड हो जाएगा और दूसरा एक्सट्रीम एंड हो जाएगा कि अब वहाँ दूसरे मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो जो एतदाल की राह है वो यहाँ पर इख्तियार करे। तो देखने से खुश होने के अंदर ज़्यादातर जो उसकी ज़ेबो ज़ीनत है, उसका लिबास है, उसका रहन सहन है, ये इसमें ज़्यादा मुराद होता है। अच्छा, तीसरी बात फरमाई के अगर शौहर कसम खा बैठे तो बीवी उसकी कसम को सच्ची करे। यानी शौहर ने कसम खाई कि ये काम होगा और वो काम जायज़ है, तो बीवी को चाहिए कि उस काम को पूरा करे। शौहर ने कसम खा ली कि ये काम नहीं होगा, अब वो काम छोड़ना जायज़ है तो बीवी ना करे। अब ये नहीं है कि इसके उलट हो जाए कि शौहर ने कसम खाई कि ये काम होगा, बीवी बोले सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं करके छोड़ूंगी। शौहर कहता नहीं होगा या होगा, बीवी उसके उलट चले। तो ये जो जिदबाजी की सूरत होगी ये घरों की बर्बादी का सबब तो बन सकती है, कभी भी घरों के मिलाप का सबब नहीं बन सकती। तो इसमें हत्तल इम्कान बीवी को अपने शौहर की इताअत करनी चाहिए और फिर अपने नफ्स और अपने शौहर के माल में भलाई करें। तो ये बड़ी वादे सी बात है कि अपने नफ्स में खयानत करना माज़ अल्लाह तो संगीन तरीन चीज़ है। और इसी तरह शौहर का माल जो है वो भी संभाल के रखें। ये नहीं है कि शौहर बेचारा तो ये समझ रहा था कि मैं इतने पैसे ला के देता हूँ और अच्छी खासी सेविंग जमा होगी घर में और जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे काम आएगी, और जब उसको ज़रूरत पड़ी तो पता चला कि घर के अंदर तो 2600 रुपये रखे हुए हैं, बस है ही नहीं, पैसे ही नहीं। क्या हुआ जी, निकल गए, उड़ गए सारे। तो शौहर के माल को जो है वो ढंग से खर्च करना। ऐसी अच्छी खवातीन होती हैं, ऐसी अच्छी बीवियाँ होती हैं कि शौहर को ये तसव्वुर नहीं होता कि घर में पैसे होंगे और ज़रूरत के वक्त बीवी निकाल के देती थी कि मैंने जमा करके रखे हैं। तो रवैया ये होना चाहिए ना, ये कि शौहर बेचारा ला ला के भरता रहता है और बाद में पता चला कुआं ही खाली है ही घर में कुछ नहीं, तो ये वाली सूरत नहीं होनी चाहिए। तो शौहर के माल के अंदर दयानतदारी और जो उसको अच्छे अंदाज में चलाना चाहिए वो होना चाहिए। एक बड़ा वादे सा उसूल है कि घर बनाना जो है ये बीवियों ही का काम होता है, ये औरतों का काम। अगर एक आदमी किराए के मकान पर रहता है और वो किराए के मकान से अपने मकान में जाता है, अगर वो अपने मकान से ज़्यादा अच्छे मकान में जाता है, अगर घर के बड़े मौाक़े के ऊपर अखराजात वगैरह निकल आते हैं, तो इसमें 90% गालिबन 90% जो है इसमें ख़वातीन का हाथ होता है कि उनकी समझदारी और उनका सुलझापन और उनकी गृहस्थी और उनका जो घरेलू निज़ाम चलाने का तजर्बा या सोच होती है उसके ज़रिए ये घर की सारी चीज़ें बन जाती हैं। और उजाड़ने के अंदर भी कह लें कि 10% इधर ही की तरकीब होती है कि अच्छे खासे जो है ना वो कमाते हुए पूरी ज़िंदगी में ना कभी घर बना पाते हैं ना कभी कोई बड़ा काम कर पाते हैं। वजह ये है कि कपड़ों से फुर्सत नहीं है, जीनत से फुर्सत नहीं है, जेवर से फुर्सत नहीं है, सैर सपाटे से फुर्सत नहीं है, रंग बिरंगे खानों से फुर्सत नहीं है, या इधर उधर उड़ाने से फुर्सत नहीं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि जितने मर्दी पैसे हो जाएं कभी घर बनता नहीं। एक हदीस मुबारक शौहर की इताअत के हवाले से बड़ी खूबसूरत हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत इस हाल में फौत हुई कि उसका शौहर उस पर राजी था, वो औरत जन्नत में दाखिल हो गई। ये है शौहर का राजी होना, जिसे अभी जो मैंने तफसील अर्ज की है ना, शौहर की खिदमत, दिलजोई और उसे जो है उसकी रजाजोई का भरपूर अहतमाम करना, ये उसकी फजीलत है। और ये जो शौहर को राजी करना है कि औरत दुनिया से इस हाल में जाए कि उसका शौहर उससे राजी हो, ये औरत के अपने अमल और तर्ज अमल की वजह से। शौहर के राजी होने का ये मतलब नहीं है कि हर तीसरे दिन उसे पूछना शुरू कर दे, हाँ भी राजी है या नहीं है, और शौहर मजबूर होकर बोले हाँ हाँ राजी हूँ, हाँ हाँ राजी हूँ। ये रजामंदी नहीं होती। अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है और हकीकत हाल को जानता है कि वाकई शौहर राजी है या बेचारे के जो ना वो क्या नाम है उसे उगलवाते हैं तो बेचारा बोल ही देता कि हाँ मैं राजी हूँ। तो ये औरत खुद समझती है कि क्या उसकी खिदमत, क्या उसका बर्ताव, क्या उसका सलूक, क्या उसका शौहर से जो उससे ताल्लुक है वो ऐसा है कि जिसकी वजह से शौहर उससे राजी। तो जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए कि शौहर राजी है, तो फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल हो गए। शौहर के हुकूक में से एक और चीज़ वो है अपने शौहर से प्यार मोहब्बत करना और उसके दुख सुख में उसका शरीक बनना, साथी बनना, मुआविन बनना। कुरान मजीद ने मियां बीवी का जो रिश्ता बयान किया है, उस रिश्ते के लिए जो अल्फाज बयान फरमाए, आप गौर करें, सूरह रूम आयत नंबर 21 में है, फरमाया व मिन आयातिही अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जानों में से ही जोड़े बनाए, मर्द औरत के जोड़े बनाए। जोड़े क्यों बनाए गए? फरमाया लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो, तुम्हें उनसे सुकून मिले। और फरमाया व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहम दिली रख दी। मियां बीवी में मोहब्बत और रहम दिली, रहमत जो है वो पैदा फरमा दी, शफकत पैदा फरमा दी। अब देखिए, तीन चीज़ें जो मियां बीवी के ताल्लुकात हैं उसमें तीन चीज़ें कुरान ने बयान फरमाई। पहली बयान फरमाई, फरमाया कि ताकि शौहर अपनी बीवियों से सुकून हासिल करें, ज़हनी सुकून, जिस्मानी सुकून, ज़िंदगी का सुकून, ये सारी की सारी चीज़ें घर से इंसान को मिलती। मैंने पिछले सिलसिलों के अंदर भी अर्ज़ किया था कि इंसान के जो सुकून का असल मरकज़ होता है वो उसका घर होता है। जो इंसान घर में सुखी नहीं है, जिसे घर में सुकून नहीं मिलता, उसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिल सकता। वो भले क्लबों में जाए, वो भले कॉन्सर्ट्स में चला जाए, वो भले शराब खानों में चला जाए, वो भले दुनिया भर की आवारा गर्दी और सैर व सियाहत करता रहे, मुड़ के घर पे ही आना। तो जो सुकून का असल जगह है वो इंसान का घर होता है। अब इसमें यहाँ जो कुरान की आयत है वो इसमें औरतों को तरहीब है कि तुम्हारा वजूद जो है वो शौहर के लिए आराम और सुकून का जरिया होना चाहिए। तो अब इसमें मर्द अपने अमल पर गौर करे, औरत जो है वो अपने अमल पर गौर करे। तो तस्कीन जो है ये घर के बुनियादी लवाजिमात में से है। दूसरी बात क्या है? फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत, नरमी, नरम दीदी, शफ़क़त ये पैदा फरमा दी। तो मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता है उस रिश्ते में मोहब्बत और रहमत और नरमी का बड़ा बुनियादी दखल है। जहाँ मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं होगी वहाँ या तो रिश्ता ही टूट जाएगा और या रिश्ता ज़िंदगी भर का अजाब रहेगा। जैसे बहुत सारी जगहों पे होता है ना कि अब रिश्ता तोड़ नहीं सकते, बच्चे बड़े हो गए, अब तलाक भी नहीं दे सकते। अच्छा, या ये है कि कोई और ही वटा सटा है तो वहाँ पर जो है वो अब जुदाई नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ज़िंदगी अजाब में गुजरेगी। तो मियाँ बीवी की ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो मवद्दत पे है। इसलिए हदीस मुबारक में फरमाया कि कोई शख्स अपनी बीवी से बुग्ज़ ना रखे, अपनी बीवी से बुग्ज़ ना रखे, उससे दिल में अदावत और नफ़रत ना रखे। बाज़ शौहर ऐसे होते ना, बोल देते मेरे दिल में बस तुम्हारे बारे में नफ़रत है, अब औरत जो मर्जी उसके लिए कर दे, शोहर साहब पक्के होते हैं कि नहीं नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाए। अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं, बीवी की भी बर्बाद करते हैं, आगे बच्चों की भी बर्बाद कर देते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि खुदा ने मवद्दत का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता ये रखा मियाँ बीवी के दरमियान। और दूसरी बात है फरमाया रहमत। रहमत कहते हैं नरमी को, शफ़क़त को, नरम दिली को। तो मियाँ बीवी के दरमियान ये जो रिश्ता नरमी, शफ़क़त और एक दूसरे के साथ जो है वो भलाई का बर्ताव करना जो है, ये उनके रिश्ते को दवाम बख्शता है। तो ये चंद एक हुकूक है जो शौहर के अपनी बीवी पर है, वो मैंने अर्ज़ किए हैं। मज़ीद जो है वो इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में बयान करेंगे। अभी सवालात की तरफ चलते हैं।
आजकल ऑनलाइन काम होता है तो घर की जो लेडीज़ और ख़वातीन होती हैं वो ऑनलाइन काम में ज़्यादा होती हैं। अब उसकी वजह से भी घर में पैसा औरत की तरफ से आ रहा होता है। बसा औकात ये देखने में आता है कि फिर शौहर वहाँ पर दब रहा होता है, तो क्या अगर औरत कमाए तो क्या वो शौहर पर हुक्म चला सकती है?
ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें जो है ना, इसका ताल्लुक़ होता है समझदारी के साथ। जहाँ पर समझदारी हो और जहाँ पर शौहर अपनी हैसियत को समझता हो और औरत अपनी हैसियत को समझती हो, वहाँ पर ऐसा इशू नहीं होता। अब आप देखें सहाबा इकराम और सहाबियात में बहुत से ऐसे थे, सहाबियात ऐसी थी जो कारोबार करती थी। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये ले लें कि हज़रत सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और मोमिनों की माँ। आपका कारोबार था, बहुत बड़ा बिज़नेस था आपका, और नबी पाक अलैहिस्सलाम उस बिज़नेस को चलाते थे। लेकिन इसके बावजूद आप सय्यदना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत और सरकार अलैहिस्सलाम पे सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा देखें। तो ये क्या है कि जब हुस्न मुआमला हो, जब समझदारी का बर्ताव हो, तो फिर रिश्ता जो है वो अच्छे तरीके से चलता है। ख़वातीन जो ऑनलाइन काम करती हैं, अगर वो जायज़ काम है और जायज़ तरीके से करती हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और घर के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती और अपना पैसा संभाल के रखती है तो भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस वजह से गालिब आने की कोशिश करना, ये उसकी गलती है, और शौहर का ऐसा माहौल बनने देना ही उसकी गलती है।
इस्लामी बहनें पूछ रही हैं क्या ये बात सही है कि अगर औरत घर से बेपर्दा निकले तो फरिश्ते उस पर लानत करते हैं?
औरत का घर से बेपर्दा निकलना तो नाजायज़ ही है, ममनू ही है। बेपर्दगी फी नफ्सी ही नाजायज़ है। कुरान मजीद की आयत मुबारक बड़ी वाज़े है, फरमाया कि वला तबर रचना तबर रुजल जाहिलियतिल उला, फरमाया कि और बेपर्दगी ना करो जैसे पिछली जाहिलियत की बेपर्दगी। और औरत जब बेपर्दा घर से निकलती है तो फरमाया गया कि शैतान उसे झांकता है, और अगर खुदा ना खास्ता मादल्ला वो परफ्यूम वगैरह लगा के, खुशबू लगा के निकलती है कि गैर मर्दों तक वो पहुंचे, तो इस सूरत के अंदर उस पर लानत भी बरसती है।
मोहम्मद अजीम भाइयों वो पूछ रहे हैं कि हिसाब किताब कयामत के दिन होगा तो फिर कब्र का अजाब क्यों होता है?
उसका सिंपल सा जवाब यह है कि दो हिसाब होते हैं, एक कब्र में होता है, एक क़यामत में होगा। जो कब्र का हिसाब है उसका ताल्लुक़ सिर्फ ईमानियात के साथ है कि मर रबू का, मा दीनू का और मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल। तो ये तीनों सवाल जो है ये ईमान के बारे में है, और इन जवाबात के ऊपर जो क़यामत तक का उसका मरहला है उसका फ़ैसला किया जाता है। और जो क़यामत के दिन हिसाब है वो पूरा पूरा हिसाब है, वो है कि जो फरमाया गया कि तुम्हें भरपूर तुम्हारा अजर दिया जाएगा या सजा दी जाएगी। तो यूं कह ले कि कब्र का हिसाब एक छोटा हिसाब है, क़यामत का हिसाब एक बड़ा हिसाब है।
शौहर की आदत हो अगर ताने देने की तो बीवी उसको कैसे बर्दाश्त करे?
शौहर की आदत ताने देने की है तो बीवी उस पर सब्र ही कर सकती है। देखिए ज़िंदगी में हर शय हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता। बीसियों मामलात के अंदर ये चीज़ चलती है। बहुत सी चीज़ें बीवियों में ऐसी होती हैं कि शौहर उसको बदलना चाहते हैं लेकिन ज़िंदगी गुजर जाती है, चीज़ नहीं बदलती। बहुत सी चीज़ें शौहरों में ऐसी होती हैं कि बीवी बदलना चाहती है, शौहर नहीं बदलते। अच्छा, फिर यही बात ज़िंदगी घर में भी होती है। औलाद अपने माँ बाप में बहुत सी चीज़ें बदलना चाहती है लेकिन नहीं बदल पाती, माँ बाप हमेशा वही करते हैं। माँ बाप अपनी औलाद को बदलना चाहते हैं, औलाद नहीं बदलती। दोस्त दोस्त को बदलना चाहता है, वो नहीं बदलता। तो बात यह है कि ज़िंदगी जो है ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलती, तो किसी जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी जगह उसको बंदा कोशिश करता है तो तब्दीली आ जाती है। तो शौहर अगर ताने देता है तो बीवी आगे से इन्नल्लाह मा सबिरीन का वजीफ़ा पढ़ती रहे, सब्र कर ले।
एक सवाल यह है कि खुला का इनकार करना कैसा?
खुला का इनकार करना, ये जुमला जो है ये मुजमल है। खुला का इनकार जो है वैसे तो कोई मुसलमान नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर खुला का तस्किरा मौजूद है। कुरान पाक के अंदर आयत मुबारक खुला के बारे में बड़ी वाजह तौर पर मौजूद है। लिहाजा अब ये मुसलमान से ये तो मुतसव्वर नहीं है कि खुला का बाकायदा कुरान में तस्किरा हो और वो उसका इनकार कर दे, क्योंकि कुरान का इनकार करना तो कुफर है। तो लिहाजा अब जो इनकार कर रहा है उसके जुमले का माना व मफहूम और उसका पूरा सियाको सबाक देखना पड़ेगा। क्या मिसाल के तौर पे कोई शख्स खुला का इनकार करता है कि जी मैं कोर्ट के खुला को नहीं मानता, जो कोर्ट कचहरी में खुला होता है मैं इसको नहीं मानता। अब देखें, अब जुमले की नौयत बिल्कुल बदल गई कि जो ये इनकार है ये मादला को कुरान की आयत का इनकार नहीं है, वो कोर्ट के प्रोसीजर के अतबार से बात कर रहा है और उस पर उसको शकूक व शुबहात हैं और उसे वो तस्लीम नहीं कर रहा। इसी तरह और सूरतें भी हो सकती हैं। तो ऐसे जुमले कि जिनके ऊपर बड़ा भारी हुक्म बनता हो, उन जुमलों के हवाले से ये होता है कि उनका सियाक व सबाक पता होना चाहिए।
विरासत क्या जबरी है, यानी लेनी ही पड़ती है, या तकसीम से पहले भी माफ़ कर सकते हैं?
विरासत के बारे में यही है कि ये जबरी है। जबरी का मतलब ये होता है कि विरासत में जिसका हिस्सा मुतय्यन होता है तो उसे वो हिस्सा ही लेना होता है। वो ये कह दे कि मैं अपना हिस्सा नहीं लूँगा, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100 मरतबा भी बोल दे, उसका हिस्सा वैसे का वैसा बाकी रहता है। बाकी ये है कि अगर वो किसी को तोहफ़ा देना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तोहफ़ा वो दे सकता है। अगर मिसाल के तौर पे भाई बहन जो है वो हिस्सेदार है और भाई जो है वो अपना हिस्सा अपनी बहन को हिबा कर देता है, तोहफे में दे देता है, या बहन अपने भाई को तोहफे में दे देती है और जो तोहफे की शरायत है वो पूरी हो जाती हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये जबरी भी है इस एतबार से कि मुआफ़ कर देने से या छोड़ देने से ये मुआफ़ नहीं हो जाता, छूट नहीं जाता। और बाकी ये है कि हिबा तो कर ही सकते, तोहफा तो दे ही सकते।
शब्बीर अहमद भाई हैं, वो पूछ रहे हैं कि मरने के बाद रूहें कहाँ रहती हैं?
मरने के बाद रूहों के बहुत से मकामात हैं। बाज़ लोगों की रूहें उनकी कब्रों पर ही रहती हैं और बाज़ गुनाहगारों की रूहें जो हैं ये यमन का एक नाला है, कुआं है, वहाँ पर रहती हैं। और नेक लोगों की एक तादाद है कि जिनकी रूहें आबे जमजम के कुएं के पास रहती हैं, खाने काबा के पास रहती हैं। बहुत सी अरवाह ऐसी हैं कि जो अरश मुअल्ला के नीचे आला इल्लीयीन का जो मकाम है वो वहाँ पर रहती हैं। और जो शहीदों की रूहें हैं उनके बारे में फरमाया गया कि वो नूरानी जो है वो किंदीलों में और सब्ज़ रंग के परिंदों के पोटों में रहती हैं और वो भी आला इल्लीयीन में या जन्नत में रहती हैं। तो यूँ रूहों के मुख्तलिफ़ मकामात हैं और बहुत सी रूहें वो होती हैं कि जिनको आने जाने की इजाज़त होती है। जैसे हदीस के अंदर मौजूद है कि हर शब जुमा, जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को रूहें अपने घरों को आती हैं। इसी तरह शब बरात को रूहें अपने घरों को आती हैं और आके फरियाद करती हैं कि हमारे लिए इसाले सवाब करो। तो यूँ रूहों के हवाले से एक बहुत वसी और एक बहुत यूँ कह लें कि मुफस्सल जो है वो मालूमात अहादीस के अंदर मौजूद है। इस हवाले से आला हजरत ने रहमा की एक किताब है हयातुल अमवात फी बयानी समाइल अमवात, तो इस किताब के अंदर इस हवाले से बहुत मुफस्सल मवाद मौजूद है।
अगर शोहर बीवी को टाइम ना दे सके तो क्या शोहर पर गुनाह होगा?
बीवी को टाइम ना देने के बहुत से मानी बनते हैं। एक ये है कि शोहर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, रात को आता ही 12 बजे है, बीवी या सो चुकी है, बच्चों को सुबह तैयार करके उसने भेजना है, तो अब ये टाइम ना देना जो है ये एक किस्म की ज्यादती है। इसे गुनाह नहीं कहेंगे लेकिन ये एक किस्म की ज्यादती है कि ये बीवी का हक है कि शोहर उसे टाइम दे। और एक ये है कि शौहर बीवी से ऐसी लापरवाही इख्तियार कर ले कि महीनों गुजर जाएं, वो उसके करीब ही ना आए, तो अब ये वाली सूरत जो है ये गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो सकती है। इस पर जो है वो अहादीस तैयबा यानी कि रिवायात मौजूद है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान और आइमा मुज्तहिदीन का मौजूद है कि 4 महीने इस तरह नहीं गुजरने चाहिए कि शौहर असलन अपनी बीवी के करीब ना जाए। और अगर वो बैरून मुल्क भी जाए तो बहरहाल जो बीवी का हक है वो बाकी है और ये 4 महीने के अंदर जो है वो उसके पास आना उस पर लाजिम होगा, इल्ला ये कि बीवी इजाज़त दे। कुरान मजीद की आयत है जिसमें फरमाया कि ऐसा रवैया ना हो कि फ़त्ताज़ा रूहा कल मुअल्लका, कि तुम बीवियों को ऐसे छोड़ दो कि जैसे कोई लटकी हुई चीज है जिसकी परवाह ही नहीं है, अभी गर्मी लगे, सर्दी लगे, भूख लगे, ना लगे, जो मर्जी हो उसको बिल्कुल मुअल्लक छोड़ा हुआ। तो इसको कुरान मजीद ने नाजायज करार दिया है। तो अब वो एक से ज्यादा बीवियां हैं या एक बीवी है जिसके साथ भी फतज़रूहा कल मुअल्लका वाला रवैया होगा वो जायज नहीं होगा।
एक सवाल आया है कि रजाई बच्चे का क्या विरासत में हिस्सा होगा?
रदाई बच्चा वो होता है कि जो दूध के रिश्ते से रिश्तेदार बने, जैसे किसी औरत ने बच्चे को दूध पिलाया 2.5 साल की उम्र के अंदर अंदर, 2 साल तक पिलाना जायज होता है लेकिन 2.5 साल तक हुरमत साबित हो जाती, तो इस उम्र में किसी बच्चे को दूध पिलाया तो वो बच्चा जो होता है वो दूध पिलाने वाली खातून का बेटा बन जाता है, उसे कहते हैं दूध वाला बेटा। और जो उस औरत का शौहर होगा वो इस बच्चे का रदाई बाप यानी दूध के रिश्ते का बाप बन जाएगा। अब ये रिश्ते के एतबार से तो बाप और माँ कहला रहे हैं, लेकिन दूध का रिश्ता ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से विरासत भी साबित हो जाए। किसी और रिश्ते से विरासत बनती है तो वो और चीज़ है, लेकिन महज दूध के रिश्ते से अगर कोई बेटा या माँ या बाप या बेटी बन गया तो उसका विरासत में हिस्सा नहीं होगा।
शफात कुबरा से क्या मुराद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफात क्या काफिरों के लिए भी होगी?
शफात कुबरा जो है उसमें तो काफिर भी शामिल है। शफात कुबरा बेसिकली ये है कि मैदान क़ियामत में जब सारी मखलूक जमा होगी और आधा दिन गुजर जाएगा और लोगों का हिसाब शुरू नहीं होगा और लोग क़ियामत की गर्मी की वजह से सख्त परेशान और तकलीफ़ में होंगे, तो उस वक्त वो कहेंगे कि किसी के पास जाके हम ये कहें कि अल्लाह ताला से हिसाब तो शुरू करवा दें हमारा। तो फिर वो तवील हदीस है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से होते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह मखलूक का हिसाब शुरू कर दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफाअत पर मखलूक का हिसाब शुरू हो जाएगा। तो ये जो हिसाब शुरू होना है इसमें मुसलमान और काफिर सब शामिल हैं। तो ये है शफाअत कुबरा, और ये शफाअत की वो सूरत है कि जिसमें मुसलमानों के साथ काफिर भी शामिल हैं। काफिरों के लिए वो शफाअत नहीं कि जो उनको जहन्नम में जाने से रोक दे या उनके जो दायमी अजाब है उसके अंदर तख़फीफ़ का बायस बने और दीगर सूरतें। तो बहरहाल ये शफाअत कुबरा, और कुरान मजीद के अंदर इसी की तरफ इशारा है, फरमाया असा अन यबअसका रब्बुका मकामा महमूदा, करीब है कि आपका रब ए हबीब आपको उस मकाम पे खड़ा करेगा जहां सब लोग आपकी हमद कर रहे होंगे, जहां सब लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे। तो ये जो मकाम महमूद है ये शफात कुबरा का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें क़्यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की शफात से बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।